पाठ 27 पवित्र स्थान। मुझे ईश्वर के लोगों की अत्यधिक निराशा को दिखाया गया। उन्होंने ठीक समय पर यीशु के आने का दिन को नहीं देखा था। उन्हें मालूम नहीं था कि क्यों यीशु उस दिन 22 अक्टूबर 1844 ईस्वी को नहीं आया। उनको यह भी समझना कठिन हो रहा था कि क्यों भविष्यवाणी का वो दिन उस दिन को अंत नहीं हुआ। दूत ने कहा, क्या ईश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ? क्या ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की? नहीं, उसने तो अपनी सब प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की। यीशु जी उठा। उसने स्वर्ग का पवित्र स्थान का दरवाजा भी बंद कर दिया था। उसने स्वर्ग का महापवित्र स्थान का दरवाजा खोलकर उस दिन प्रवेश किया था, क्योंकि उसको जगत का महापवित्र स्थान के समान शुद्ध करना था। इस प्रकार स्वर्गदूत ने उनको बताया, जो लोग धीरज से प्रतीक्षा करेंगे वे इस रहस्य को समझेंगे। मनुष्य से गलती हुई, पर ईश्वर की ओर से नहीं हुई है। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी सब पूरी हो गई। मनुष्य गलती से पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगा था कि भविष्यवाणी का अंत अर्थात यीशु का स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना होगा। ईश्वर की प्रतिज्ञा असफल नहीं, पर मनुष्य की आशा निराशा में बदल गई। यीशु ने निरुत्साही लोगों को अगुवाई करने के लिए अपने दूतों को भेजा। उन लोगों को महापवित्र स्थान दिखाएं जहां यीशु प्रवेश कर उसको माफ करेगा, इस्राएलियों के लिए उद्धार का विशेष काम करेगा। यीशु ने दूतों को बताया कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वे उसके इस काम को समझेंगे। मैंने देखा कि जब यीशु महापवित्र स्थान में विचवाई का काम करता रहेगा तो वो नया यरूशलेम से शादी करेगा। जब उसका काम महापवित्र स्थान में पूरा होगा तो वो पृथ्वी पर लौट आवेगा और उनको जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें अपने साथ स्वर्ग में उठा लेगा। जब भविष्यवाणी का समय पूरा हुआ तो क्या घटना हुई उसे दिखाई गई। तब मैंने देखा कि पवित्र स्थान में यीशु का काम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मुझे 1844 ईस्वी जब भविष्यवाणी का समय पूरा हुआ तो क्या घटनाएं हुईं उसे दिखाई गईं। जब मैंने देखा कि पवित्र स्थान में यीशु का काम समाप्त हुआ तब उसने उसका दरवाजा बंद कर दिया। तब एक बड़ा अंधकार उन लोगों को आकर घेरा जो उसके विषय सुने थे पर उसके आगमन का संवाद को नहीं माने थे। वे खो गए। इसके बाद यीशु ने दामी वस्त्र पहन लिया। उसके वस्त्र के नीचे चारों ओर घंटी और अनार के समान बेल बूटे लगे हुए थे। अपने कंधे से छाती तक चंगाई के काम करने का एक पटुका लटकाया हुआ था। जैसे वह चलता था तो हीरा के समान चमकता था। अक्षरों को बड़ा करके दिखाता था, जो लिखित नाम के समान दिखाई देता था या पटुका पर खोदा हुआ सा लगता था। जब वह अपने सिर को पूर्ण रूप से सजाता था तो ऐसा लगता था कि मुकुट पहना है। दूत लोग उसके चारों ओर घेरे हुए थे। एक जलता हुआ रथ गाड़ी से वो पवित्र स्थान का दूसरा खाना भाग में जा पहुंचा। तब मुझे कहा गया कि इस पवित्र स्थान के दोनों भागों को गौर से देखने को पर्दा और दरवाजा खोल दिए गए और मुझे वो प्रवेश करने कहा गया। पहला भाग में मैंने 7 मोमबत्तियों को टेबल पर रखी हुई देखी। ये तो बहुत ही गौरवपूर्ण थीं। वहां पर मैंने दिखावे या भेंट की रोटी देखी और धूप जलाने की बेदी और धूप धुआं चमक रही थी। वे सब उसकी परछाई को दिखा रही थी जो वहां घुसा था। इन दो भागों के बीच का पर्दा भी बहुत ही गौरवमय था। ये विभिन्न रंगों और द्रव्यों से मढ़ा हुआ किनारे का पाड़ भी बहुत ही सुंदर था। पाड़ पर सोने का काढ़ा हुआ दूतों को दिखाती थी। पर्दा खोला गया तो मैंने दूसरा भाग की ओर झांका। मैंने वहां सोने से बना हुआ बहुत सुंदर संदूक को रखा देखा। संदूक के ऊपर से नीचे छोर तक ऐसा सोना की कारीगरी थी कि ये एक मुकुट जैसा दिख रहा था। हां, ये तो चोखा सोना से बनाया गया था। संदूक के अंदर इस आज्ञा की दो पट्टियां रखी हुई थीं। इसकी दोनों छोर पर एक एक कारूप थे जो अपने एक एक डैने उसके ऊपर पसारे हुए थे। उनके डैने ऊपर की ओर उठे हुए थे और जैसे ही यीशु संदूक के नजदीक आया तो उनके दो डैने उसके सिर को ऊपर से स्पर्श कर रहे थे। वे कारूब आमने सामने खड़े होकर नीचे संदूक को देख रहे थे। इससे ये प्रकट हो रहा था कि सब स्वर्गदूत दस आज्ञा को बड़ी रुचि के साथ देख रहे थे। दोनों कारूप के बीच में एक सोना का बर्तन था। जैसे ही विश्वासी संतों की प्रार्थना यीशु के पास पहुंचती है तो यीशु उन्हें अपने पिता के पास पहुंचा देता है और उस बर्तन से मधुर सुगंध ऊपर उठने लगती है। वो खूब सुंदर धुआं के सादृश्य दिखाई देता था। यीशु जिस जगह पर खड़ा था उसके सामने संदूक था और वहां से बहुत तेज जलती हुई बत्ती निकलती थी, जिसको मैं देख न सकी क्योंकि आंखें चौंधिया जाती थीं। ये ईश्वर का सिंहासन जैसा दिखाई दिया। जैसे ही ये सुंगत धुआं ईश्वर पिता के पास पहुंचा तो पिता ने तुरंत इसे यीशु के पास भेज दिया। फिर यीशु ने इसे प्रार्थना करने वालों तक पहुंचा दिया जो मधुर सुंगत के समान थी। प्रकाशमय महिमा यीशु के ऊपर अत्यधिक रूप से पड़ी। ये दया का सिंहासन के ऊपर छाकर सारा पवित्र स्थान को महिमा की ज्योति से भर दिया। मैं इस महिमा की ज्योति को देखने से अपने को रोक ली। इस महिमा का वर्णन करना कठिन है, इसके लिए कोई भाषा में शब्द नहीं मिलेंगे। मैं इस सौंदर्य में घिर गई और इस दृश्य की महानता और महिमा से अलग कर दी गई।
मैंने पृथ्वी का पवित्र स्थान को भी देख पाया जिसमें दो भाग थे। मैंने इसका स्वर्ग का पवित्र स्थान से तुलना कर देखा तो एक सा था। मुझे बताया गया कि पृथ्वी का पवित्र स्थान या पवित्र तंबू तो स्वर्ग का पवित्र स्थान के स्वरूप में ही बनाया गया था। पृथ्वी का पवित्र स्थान में जो सामान रखे गए थे ठीक वैसा ही स्वर्ग का पवित्र स्थान में भी रखे गए हैं। जब पर्दा उठाया गया तो मैंने देखा कि वहां पर भी पृथ्वी का महापवित्र स्थान में जो सामान थे वहां भी हैं। पृथ्वी का पवित्र स्थान के दोनों भागों में याजक सेवकाई के काम करते थे। पहला भाग प्रत्येक दिन सेवकाई का काम करता था और दूसरा भाग में वर्ष में सिर्फ एक दिन सेवकाई का काम करने या पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए प्रवेश करता था, जहां पहला भाग में लोगों के पाप रखे रहते थे। मैंने देखा कि यीशु ने दोनों भागों में सेवकाई के काम किए। उसने महापवित्र स्थान में अपना ही लहू लेकर प्रवेश किया। पृथ्वी के याजकों को तो अपनी सेवकाई के कामों से मृत्यु के कारण छुट्टी मिल जाती थी, पर यीशु तो सदा सर्वदा का महायाजक बना रहेगा। बलिदान और भेंट इस्राएलियों के द्वारा पृथ्वी का पवित्र स्थान में लाए जाते थे। वे सब आने वाला मसीह का गुण को दिखाते थे। ईश्वर का ज्ञान ने इस विशेष प्रकार का काम हमें दिया था, जिसके द्वारा हम पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और स्वर्ग का महापवित्र स्थान में यीशु इसी प्रकार का काम करता है उसको समझने में मदद मिलती है। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था उस वक्त उसने चिल्लाकर पुकारा कि पूरा हुआ, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो भाग में बट गया। इसका मतलब यही था कि मंदिर की सेवकाई विधि सदा के लिए बंद हो गई। ईश्वर फिर बलिदानों को ग्रहण करने के लिए इस्राएलियों से मंदिर में भेंट नहीं करेगा। उस वक्त यीशु ने अपना लहू बहाया। उसी लोहू के द्वारा वो स्वर्ग का महापवित्र स्थान में सेवकाई का काम पूरा करेगा। जैसा पृथ्वी का महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश कर मंदिर को शुद्ध करता था, उसी प्रकार यीशु भी स्वर्ग का महापवित्र स्थान में दानियेल 8:10 की भविष्यवाणी के आधार पर 2300 दिन के अंत में 1844 ईस्वी में स्वर्ग का महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और लोगों के लिए प्रायश्चित का काम कर मंदिर को शुद्ध कर रहा था। आधारित वचन यर्मयाह 3:14, इब्रानी 1, प्रकाशित वाक्य 38:4, 1:21, 2।